ओम शांति। थोड़ा एक बार बोलिए ओम शांति। सुबह से सुन सुन करके शायद थक गए होंगे, लेकिन हम आपको बहुत इंटरेस्टेड बातें सुना रहे हैं। किसकी बातें सुना रहे हैं? हमारे इस यूनिवर्सिटी, गॉडली यूनिवर्सिटी के टॉपर स्टूडेंट की बात सुना रहे हैं। हम आपको वो बातें सुना रहे हैं कि सृष्टि के प्रथम पुरुष के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रथम पुरुष कौन। तो ब्रह्मा बाबा के बारे में आप लोग सुना भी होगा, यहां भी फोटो देखते हैं, चित्र देखते हैं और सुनते भी रहते हैं भाई बहनों के द्वारा। लेकिन ब्रह्मा बाबा सिंध हैदराबाद में उनका जन्म हुआ। एक एजुकेटेड फैमिली, उनके फादर हेडमास्टर थे, साधारण ब्राह्मण कृपलानी फैमिली में जन्म हुआ, लेकिन बड़े चरित्रवान, बड़े हर पढ़ाई लिखाई में भी बड़े आगे। और जब वो बड़े हुए तो बिजनेस में गए। सिंधी लोग आप जानते हैं कि बिजनेस में बहुत माहिर होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। तो बाबा भी बिजनेस किए, कई प्रकार के बिजनेस किए, लास्ट में उन्होंने हीरे जवाहरात के बिजनेस किए। कलकत्ता में हीरे जवाहरात के बिजनेस किए। लेकिन सब कुछ होते हुए भी बाबा में भक्ति भाव बहुत था, परमात्मा को पाने की श्रद्धा, एक इच्छा बहुत थी। इतना व्यस्त होते हुए भी, बिजनेसमैन इतने पैसे वाले हो करके भी, जब किसी बाबा की प्रवेशता नहीं थी तब की बात सुना रहा हूं, कि वो जब तक गीता पढ़ते नहीं थे तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। चाहे वो ट्रेन में है, ट्रेन में भी गीता पढ़ेंगे तो कुछ लेंगे। भक्ति भाव उनमें इतनी थी कि वो फैमिली को लेकर के कोई ऐसा तीर्थ स्थान नहीं होगा जहां नहीं गए होंगे, कोई ऐसा मंदिर नहीं होगा जहां वो नहीं गए होंगे। उन्होंने सब जगह पूजा पाठ भक्ति में बहुत रुचि थी। वो अज्ञान काल में, जबकि परमात्मा का प्रवेशता नहीं था, तभी भी वो दान पुण्य बहुत दान पुण्य करते थे। तो कहीं तीर्थ पर जाकर के दान पुण्य करते थे, तो नॉर्मली हम लोग दान पुण्य करते हैं तो अपने लिए करते हैं, बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं, लेकिन बाबा इन बातों में नहीं। बाबा दान करते थे तो विश्व के लिए करते थे। सॉरी, बाबा दान करते थे तो सारे विश्व के लिए करते थे। तो वहां उनके परिवार रहता था, बच्चे खड़े रहते थे, तो बच्चे बोलते थे जे पापा आप संपन्न हैं, ठीक है, आप दान कर रहे हैं तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप मेरे लिए करिए। तो बाबा उनको देखते थे, मुस्कुराते थे और कहते थे बेटा तुम कहां खड़े हो, विश्व में ही खड़े हो ना, यही विश्व है ना, एक से ही अनेक बनता है ना, तो आप विश्व में खड़े हो तो हमने विश्व को दान दिया तो आपको भी वो शेयर मिलेगा, क्यों चिंता करते हो। माने इतनी बड़ी दिल के थे। उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए 12 गुरु किया था। जब उनको फर्स्ट साक्षात्कार हुआ तो गुरुओं के पास गए कि आपकी आज्ञा से आपने साक्षात्कार कराया था, ऐसी साक्षात्कार हुआ है मुझे, तो उन दिनों के 1936 की बात कर रहा हूं, उन दिनों के गुरु लोग बहुत अच्छे होते थे। सबने कहा कि नहीं लक्खी बाबू, आप बड़े चरित्रवान हैं, बड़े उदार चित हैं, बहुत पुण्य आत्मा है, बहुत धर्म का काम करते हैं, परमात्मा ने आपको डायरेक्ट साक्षात्कार कराया है, हमने नहीं कराया। अब उन लोगों से पूछा फिर मुझे करना क्या है, उन लोगों ने यही राय दिया कि हम यही राय दे सकते हैं कि इसको और आगे बढ़ाने के लिए और स्पष्ट करने के लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का ये दिया हुआ चीज है, आप थोड़ा साइलेंस में और जाइए। बाबा साइलेंस में चले गए। उन्होंने सोचा कि बनारस तीर्थ स्थान है, चलो हम वहां जाकर के गंगा तट पर साइलेंस में रहेंगे, समाधि लगाएंगे। तो उनके फ्रेंड का कोठी था, वहां उनके कोठी में चले गए। लेकिन कहां भी जाते थे तो परिवार के साथ जाते थे, परिवार को लेकर के चले गए, परिवार वो भी वहीं था। बाबा उनके कोठी के सामने बगीचा था उनका, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, तो उस बगीचे में थल्ला बना हुआ था पेड़ के साथ, तो थल्ले पर जाकर के बाबा एकांत शांत में बैठ जाते थे। शाम का समय था, वो बैठे थे, फिर दोबारा साक्षात्कार हुआ तो उनको ये आवाज आई कि निजानम स्वरूपम शिवम शिवम, ये कौन करा रहा है, शिव बाबा आपको साक्षात्कार करा रहा है, शिव बाबा का परिचय, शक्ति स्वरूपम शिवम शिवम, ज्ञान स्वरूपम शिवम शिवम, बाबा की साक्षात्कार शिव बाबा का डायरेक्ट हुआ। फिर थोड़े देर में देखते हैं कि विनाश, सारी दुनिया तबाह हो रही है, अर्थक्वेक है, कहां बाढ़ है, कहां बम पड़ रहा है, कहां कुछ कहां कुछ, दुनिया तबाह हो रही है, लोग रो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। बाबा देख करके घबरा गए। फिर थोड़े देर में बाबा देखते हैं ऊपर से तारे आते हैं और नीचे फरिश्ता बन जाते हैं, देवता बन जाते हैं। फिर उनको आवाज आई कि ऐसी दुनिया आपको स्थापन करनी है। और बाबा और ये हो गए कि भाई हम कहां एक बिजनेसमैन, एक साधारण, एक भगत, और कहां मुझे नई दुनिया, दैवी दुनिया स्थापन करनी है, ये कैसे हो सकता है। और चिंतन में गए। फिर शिव बाबा ने धीरे धीरे उनको सारा डायरेक्शन देते गए। फिर इन्होंने अपने बिजनेस को बाइंड अप करने के लिए सोचा, क्योंकि हम बिजनेस करेंगे तो ये काम हम कर नहीं सकते, परमात्मा का काम नहीं कर सकते। तो कलकत्ता में जाकर के पार्टनर को कहा कि भाई ये हम बिजनेस बाइंड अप करना चाहते हैं। दुकान में उनके बाबा की दृष्टि बदल गई, हीरे जोरात के बिजनेस, और वो हीरे जोरात दुकान में गए तो कौड़ियां दिखने लगी, ये कौड़ियां पड़ी हुई है, ये पत्थर हैं, इतनी दृष्टि बदल गई। बोला कि ये हम कौड़ियों का बिजनेस नहीं करेंगे। उनके पार्टनर सोचा ये हीरे जोरात कल ये सबसे अधिक परखी थे हीरे का, राजाओं के साथ बहुत अच्छा इनका संबंध था, बिजनेस था, तो ये आज बाबा को क्या हो गया। बाबा ने कहा कि नहीं मुझे कुछ हुआ नहीं है, आप मेरे को अब परमात्मा के आदेश हुई है, मुझे अब कुछ नया काम करना है, नई दुनिया स्थापन करनी है, इसलिए मुझे ये काम करना नहीं है। पार्टनर ने इनको जो हिस्सा इनका था वो दे दिया। लेकिन बाबा को धुन, बाबा सिंध गए, पहले सिंध जाते थे, घर जाते थे तो बंगाल के मिठाइयां आप लोगों को जानते हैं कि प्रसिद्ध है, तो बहुत सारी मिठाइयां ले जाते थे, बच्चों के लिए खिलौना ले जाते थे, बांटते थे पड़ोस के बच्चों को, घर के बच्चों को, सबको बांटते थे। अब लास्ट बाबा यहां से गए हैं तो कुछ नहीं ले गया, क्योंकि उनको धुन अलग था। लेकिन बाबा के चेहरे पर, बाबा में इतनी कशिश थी कि कोई भी बाबा को देखता था तो बाबा दिखाई नहीं देते थे, फरिश्ता दिखाई देते थे, नारायण दिखाई देते थे, कृष्ण दिखाई देते थे। नहीं तो आप सोच सकते हैं, चार पांच बच्चों का बाप, परिवार बड़ा परिवार, किसी से उन्होंने राय नहीं लिया बिजनेस बंद, इतना बड़ा बिजनेस को बाइंड अप करने के लिए। घर में वाइफ है, वो पूछ सकती है, बाबा आपने क्या किया, आपको चार बच्चों को पालना करनी है, आपने तो धंधा ही बंद कर दिया। लेकिन नहीं, वो वाइफ सामने आती है, बाबा को देखती है तो फरिश्ता दिखाई देता है, कृष्ण दिखाई देता है। कृष्ण से कोई क्वेश्चन पूछेगा, कृष्ण को देखकर तो खुशी हो जाती है, लोग मगन हो जाते हैं। तो किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, फिर बाबा सत्संग कराने लगे, ओम की ध्वनि उच्चारण करने लगे घर में बैठ करके। जब बाबा सत्संग कराते थे तो इनके परिवार वाले बैठे, उन लोगों को साक्षात्कार होने लगे, कोई ट्रांस में चला जाता था, कोई कृष्ण को देखता था, कोई नारायण को देखता था, कोई नई दुनिया को, सतयुग की दुनिया को देखता था। ये आवाज पड़ोस में फैल गई, पड़ोस के लोग आने लगे, ये आवाज शहर में फैल गई। अभी शहर के लोग आने लगे कि बाबा के सत्संग में जाने से साक्षात्कार होता है, कृष्ण दिखाई देता है, देवता दिखाई देते हैं। तो ये आवाज हो गई, तो पूरे सिंध में ये आवाज फैल गई। फिर जो साधु संत, जो महात्मा थे, जो गीता पाठी थे, उनका वो जो सत्संग चलता था वो तो खत्म हो गया। लोग यहां आने लगे क्योंकि बाबा के सत्संग में जाने से साक्षात्कार होता है, हर व्यक्ति चाहता है कि साक्षात्कार भगवान का हो। तो इस तरह से संस्था बढ़ती गई। फिर बाबा ने छोटे छोटे बच्चे, उस संस्था में माताएं, बहनें, कन्याएं आई, बच्चे आए, बाबा ने इन बच्चों को हॉस्टल खोला, स्कूल खोला, और छोटे छोटे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा और प्लस लौकिक शिक्षा देना शुरू किया। उन छोटे बच्चों को बाबा ऐसे पालना करते थे, वो कहते थे ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं, ये नहीं है कि फलाने के बच्चे हैं, ये फलाने के बच्चे हैं, ये फलाने गांव से आए हैं, ये फलाने शहर से आए हैं, नहीं, ये मेरे ठाकुर बच्चे हैं। सोचिए, 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, उसको ठाकुर के दृष्टि से बाबा देखने लगे, पालना करने लगे। मार्केट में कोई अच्छी फ्रूट आएगा, पहला फ्रूट आप जानते हैं कि वो महंगा होगा, लेकिन बाबा बोलते थे जे अरे भाई, भगत लोग ठाकुर को पहला फल भोग लगाते हैं, हमारे ये चैतन्य ठाकुर हैं, इनको भी हमको पहला फल, मार्केट में पहला फल आए वो आप खरीद कर लाओ। बाबा वो महंगा होता है, बोला कि ठाकुर को खिलाना है, महंगा क्या होता है। मतलब बाबा को इतनी भावना थी, बच्चों को इतना पालना किया, 14 साल तक पालना किया। तो और संस्था बढ़ती गई, तो बाबा ने 11 माताओं, बहनों को, कन्याओं को एक कमिटी बना करके सारा चल अचल प्रॉपर्टी विल कर दिया, खुद मालिक नहीं बने। आज तक इतिहास है, कोई भी संस्था स्थापन करता है तो खुद मालिक बन करके रहता है, उसके जाने के बाद उसके रिलेटिव मालिक होते हैं, उसके जो नजदीक के संबंधी होते हैं वो मालिक होते हैं। बाबा का ऐसा नहीं है। बाबा ने जब 11 माताओं बहनों का कमिटी बनाई, तो इनकी डॉटर नीमो शांता दादी बहुत होशियार थी, बहुत अच्छी थी, दादियों और लोगों जैसी थी, लेकिन उनका नाम उसमें नहीं डाला, क्योंकि शिव बाबा का आदेश था कि नहीं, आपके परिवार का कोई नहीं रहेगा। उन्होंने विल कर दिया, और तब से वो माताएं, उसमें से एक कन्या सबसे आगे गई, जिसको मातेश्वरी सरस्वती जगदम्बा कहा शिव बाबा ने। वो कन्या कौन थी? वो कन्या सिंध की थी, उनका भी बिजनेस था, बिजनेस में घाटा पड़ा और दिवालिया हो गए, उसके कारण उनके पिताजी को हार्ट अटैक हो गया, वो शरीर छोड़ दिया। अब उन लौकिक मम्मा की लौकिक माँ, रोती रहे। नेचुरल पति चला जाए, कोई और नहीं है तो आंसू तो आएगा ही, रोना तो आएगा ही, तो रोती रहे सारा दिन। मम्मा कुछ कर नहीं सकती थी, वो पढ़ती थी, छोटी सी थी। उन दिनों में उनका नाम था राधे, तो लेकिन उनको अच्छा नहीं लगता था, मम्मी सारा दिन रो रही है क्या करें, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन उनको जब पता लगा कि बाबा सत्संग कराते हैं और उसमें साक्षात्कार हो जाता है, तो चलो मम्मी को भी ले जाते हैं, कुछ साक्षात्कार हो जाएगा तो शायद रोना बंद हो जाएगा, तो वो लेकर के गए। इस भावना से उसको साक्षात्कार हुआ माता जी को, उस दिन से उसकी आंसू बंद हो गई, रोना बंद हो गया। वो भी यज्ञ में आ गई, बेटी सहित आ गई। उनकी बेटी राधे ने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी तपस्या किया कि छोटी 16 साल की आयु उसको सब मां कहना शुरू कर दिया। छोटी उनसे बड़ी उनकी मां थी, और भी हमारी बड़ी दादियां थी, लेकिन वो कन्या सबसे आगे गई। तो शिव बाबा ने कहा कि ये मातेश्वरी है, तो हमारे ओम मंडली का वो इंचार्ज, जो मम्मा कहेगी वही होगा। तो मम्मा सभी बच्चों की पालना किया। फिर बहुत शॉर्ट में सुना रहे हैं क्योंकि घड़ी हम 6:30 बजे पूरा करेंगे, जो हमारा लास्ट सेशन वैलिडेक्टी का है वो हम ये करेंगे। तो 47 में बंटवारा हुआ, उसके पहले बहुत सारी बातें हुई, वो आप सब जानते हैं, कितना खून खराबी हुआ, क्या क्या हुआ, वो हम नहीं ये करते हैं। लेकिन संस्था के लिए वहां के सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर को बहुत रेस्पेक्ट था, क्योंकि चीफ मिनिस्टर बाबा के फ्रेंड थे। बाबा लौकिक धंधा करते थे, बिजनेस करते थे, तो पैसे वाले थे, तो सब लोग ऐसे भी जानते थे लौकिक में। संस्कार बहुत अच्छा था, दान पुण्य करते थे, गरीबों को दान करते थे, अच्छी चीजें लोगों को ये करते थे, तो उनका चीफ मिनिस्टर से पहले से जान पहचान था। तो चीफ मिनिस्टर कहते थे कि नहीं लक्की बाबू, आपको यहां से जाना नहीं है, नहीं तो 47 बंटवारा के पहले सारे हिंदू सिंधी जो भी थे वो इंडिया में आ गए, एक आलपिन तक लेकर नहीं आए। और बाबा जब आने के लिए सोचा तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आपके लक्की बाबू, आपके संस्था के रहने से हमारा पाकिस्तान पाक है, माने साफ है, इसलिए आपको नहीं जाना। आपको कुछ भी हो, अगर शहर में कुछ खून खराबा होना होता है तो चीफ मिनिस्टर बड़ों को तो पता लग जाता है, फट से पुलिस सुरक्षा के लिए आश्रम के आजू बाजू खड़ा कर देते थे। दादियां देखती थी कि भाई पुलिस खड़ी है, तो बाबा कहते थे हाँ कुछ होने वाला है, इसलिए आपके सेफ्टी के लिए पुलिस आई हुई है, कुछ आपके लिए नहीं कुछ करेगी, आपके सेफ्टी रख रही है, कोई आकर के तूफान न करे। तो इस तरह से बाबा का, अब 47 में सब उनके बच्चों के माँ बाप आ गए, अब बाबा को पत्र लिखना शुरू किए, फोन करना शुरू किए कि बाबा अब इंडिया से हम पाकिस्तान तो आ नहीं सकते हैं, आप क्यों नहीं आ जाते हैं, इंडिया में रहिए तो हम बच्चों से भी मिलेंगे, आपसे भी मिलेंगे, हम आपको हर प्रकार के मदद देंगे, आप आइए इंडिया। तो बाबा ने गवर्नमेंट को कहा कि भाई इनके मदर फादर, इनके रिश्तेदार बुला रहे हैं, उनको आने के लिए तो आप छुट्टी नहीं देंगे, तो संस्था को भारत में जाने की छुट्टी दे दिए। उसके पहले शिव बाबा का आदेश था, भारत आदि अविनाशी खंड है, भारत विश्व गुरु था। अभी हमारे मोदी जी को ये हो रहा है कि भारत को हमको विश्व गुरु बनाना है, क्योंकि सदयुग भारत में था, अमेरिका में नहीं था, जापान में नहीं था, रशिया में नहीं था, हालांकि बहुत धनी कंट्री है, लेकिन भारत में घी दूध की नदियां, हमारी शास्त्र, हमारी इतिहास साक्षी है। तो फिर चीफ मिनिस्टर ने अपनी स्टीमर दिया, सरकारी स्टीमर दिया, और बोला कि आप एक आलपीन छोड़ करके नहीं जाइए, आप सब कुछ ले करके जाइए, हम संस्था का एक आलपीन तक भी नहीं रखना चाहेंगे, बल्कि उनके आदमी आकर के बाइंड अप करके स्टीमर में रखा और वो स्टीमर से इंडिया में आए। इंडिया में आए तो शिव बाबा ने कहा कि नहीं, कोई शहर में नहीं जाना है, कोई स्टेट में नहीं जाना है, आपको कहां जाना है, पहाड़ पर जाना है जहां तपस्या आप कर सके। तो बहुत सारी पहाड़ों पर लोग गए लेकिन उनको इतना अच्छा वाइब्रेशन नहीं मिला। आबू एक ऐसा पहाड़ है, तपस्या का पहाड़ है, जहां वशिष्ठ आश्रम है, दत्तात्रेय का मंदिर है, जहां हमारे ऋषि मुनियों ने तपस्या किया है, तो यहां आकर के तो ये एक और इसमें विशेषता है कि यहां राजाओं के बंगले, कोठियां, महल, आबू में हर राजाएं, गुजरात के राजाएं भी अपना बनाकर, लिमडी हाउस यहां है, पोकरान हाउस है, जयपुर हाउस है, भरतपुर कोठी है, तो उन लोगों की कोठियां, वो गर्मियों में आते थे, फिर वो गर्मी पूरा होते वो चले जाते थे अपने अपने स्थान पर। जब यहां आए तो भरतपुर कोठी में आए। अब सिंध में तो वहां समुद्र के किनारे रहते थे, आप जानते हैं कि समुद्र के किनारे न सर्दी होती है न बहुत गर्मी होती है, प्लेजेंट रहता है। अब यहां हिल स्टेशन पर आए, मई जून का मास था, 51 में आए, जून से बारिश शुरू हो गया, भरतपुर कोठी में रहे। अब जो लोग कहे कि हम बाबा आपको मदद करेंगे, उन्होंने मदद कुछ नहीं किया, तो थोड़ी सी बेगरी पार्ट शुरू हुई, 400 बच्चे, एक दिन ऐसा बेगरी पार्ट आ गया, 400 बच्चे, चार आना पैसा नहीं है, क्या भोजन 400 लोगों को, एक व्यक्ति को नहीं, 400 बच्चों को, 400 भाई बहनों को, चार आना पैसा नहीं। लेकिन बाबा इतने नशे में रहते थे, उनको कोई चिंता नहीं, लोग जाते थे, भंडारी जो जिनको निमित्त बनाया था भोजन का इंचार्ज, वो जाते थे पूछने के लिए, बाबा 10 बज गया है, क्या भोजन बनेगा, भंडारे में पैसा नहीं है, कुछ साधन नहीं है। बाबा बोलते थे कोई बात नहीं है, चिंता नहीं करो, 10:30 बजने दो। पोस्ट आता था, पोस्ट में लिफाफे में, पहले के पोस्टमैन बहुत अच्छे थे, खोल कर नहीं देखते थे, कुछ चेक नहीं करते थे, उसमें पैसा लपेट करके, कुछ नाम नहीं है, कुछ ये नहीं है, कुछ एड्रेस नहीं है, आता था बाबा, वो पोस्ट खोलते थे, बोलते थे भाई जाओ राशन लाओ। ऐसे 3 साल तक ऐसा पाठ चला, 3 साल तक, लेकिन कोई एक दिन ऐसा नहीं आया, हमारी दादियां सुनाती थी, कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि भूखे 300 बच्चे सो गए हों, 400, ऐसा दिन नहीं आया। ऐसा दिन जरूर आया, बाबा ने ऊपर से मैसेज भेजा कि 15 दिन ढोडा और छाछ खाना है, कोई सब्जी नहीं, कोई दाल नहीं, कोई कुछ नहीं, अभी 400 बच्चे हैं, उसमें किसी को डायरिया नहीं होगा, 400 लोगों में कोई को फीवर नहीं होगा, किसी को सर्दी जुकाम नहीं होगा, था लेकिन ऊपर का आदेश था, वो ढोडा छाछ खा करके उनके डायरिया ठीक हो गई, उनके अस्थमा ठीक हो गया, उनका बुखार ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, क्योंकि परमात्मा का ये आदेश था। इसलिए ब्रह्मा बाबा को कोई चिंता नहीं, उनको नशा था, ये था कि ये यज्ञ हमारा नहीं है, हमने यज्ञ नहीं रचा है, शिव बाबा ने रचा है, और शिव बाबा भूखा नहीं रहता है तो हमारे बच्चे भी भूखा नहीं रहेंगे, तो इतना बाबा को नशा था। फिर बाबा का आदेश हुआ कि 14 साल इन लोगों को पालना किया है, ज्ञान सुनाया है, अब इनको भेजो जाकर के लोगों को ज्ञान सुनाए, लोग ज्ञान सुनेंगे तो वो जरूर मदद करेंगे, उनको इच्छा होगी कि भाई इतना अच्छा ज्ञान है तो कुछ हम ये करें, जैसे आप लोग आए हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कोई किसी से मांग नहीं रहा है, लेकिन आप भी लोगों को प्रेरणा आती है, इतने अच्छे स्थान पर आए हैं, 3 दिन हमको नाश्ता पानी खाना पीना सब कुछ रहने के भी स्थान मिला, आप ही करके जाते हैं बिना कहे, तो उस तरह से ये हुआ। फिर अब उन दादियों को, अभी 14 साल तो कहीं गई नहीं, किसी को देखा नहीं, एक चार दीवारी के साथ रहे। अब वो भी माताएं बहनें, अब आप समझ सकते हैं कि 51 में माताओं बहनों का क्या समाज में अस्तित्व था। आज तो बहुत बड़ा अस्तित्व है, पुरुष के बराबर उनका अधिकार है, लेकिन 37 में अबलाओं को, नारियों को घर में रहने का, पढ़ाई पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। पहले कन्याएं पढ़ती नहीं थी, आज तो कन्याएं देखो भाइयों से भी अच्छे मार्क्स ला रही हैं, अच्छे अच्छे स्थान पर जा रही हैं। तो बाबा ने इन कन्याओं को भेजा, लेकिन 14 साल का तपस्या, 14 साल का उनके अंदर में जो बाबा ने शक्ति भरा था, वो जहां गई, दिल्ली गई, लखनऊ गई, बॉम्बे गई, कहां भी गई, लोग इनको देखते रहे कि कहां से है। दिल्ली गई, अभी आज हम दिल्ली जाएं या बॉम्बे जाएं तो चार कि भाई हेडक्वार्टर से भाई साहब आए हैं। उन दिनों में दादियों को रिसीव करने को कोई अपना हो तो रिसीव करे ना। वो ट्रेन से उतरी, कुली से पूछते भाई मेरे को बाहर जाना है। दीदी हाँ ये गेट से बाहर चले जाइए। बाहर गए तो रिक्शा वाले, टांगे वाले, अब उनकी आवाज तो आप समझ सकते हैं कि कैसे होता है, व्यवहार समझ सकते हैं। वो दादियां हैरान हो गई, अरे ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। तो फिर खैर ठीक है, बाबा ने भेजा है, मुझे कुछ करना है। तो एक रिक्शा वाले से पूछा भाई यहां से धर्मशाला नजदीक है? हाँ दीदी चलो मैं छोड़ के आता हूं। वो धर्मशाला में छोड़ के आया। अब वो कौन से दादी, आज भी उनके रिलेटिव के जसलोक हॉस्पिटल है, बड़े बड़े स्कूल कॉलेज बॉम्बे में है। ऐसे परिवार की दादियां बहने, अभी ऐसा भी टाइम आया तो वो धर्मशाला वाला बोला कि हम 2 दिन से ज्यादा नहीं रहने देते हैं। अच्छा भाई चल 2 दिन तो रहने दो। 2 दिन में एक रूम खोल करके दे दिया। फिर तैयार हो गए, अभी कहां सत्संग कराए, किसको ज्ञान सुनाए। तो वो लोगों ने कहा कि यहां जमुना जी हैं, लोग पूजा करने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं, वहां जाइए और वहां लोगों आपको मिलेंगे। अभी जमुना जी तो जाने के लिए तैयार हो गए, अभी बैठेंगे कहां। तो धर्मशाला में प्रोग्राम होता है तो फटी हुई बोरियां कहीं कोने में डंप करके रखते हैं। तो दादियों ने कहा कि ये बोरी हम ले सकते हैं? हाँ हाँ जितना चाहिए ले लीजिए, वो तो ऐसे फेंका हुआ है। फटी हुई बोरी पर बैठने का भी जगह नहीं, जमुना के तट पर बिछा करके तपस्या कर रही हैं 3 दादियां, मनोहर दादी, गंगे दादी, दीदी, ये सब माताएं बहने स्नान करके जमुना जी से पूजा करके निकली तो देखा कि यहां तो कोई नहीं था। ये 3 देवियां और इनके इतने चेहरे से तपस्या की वाइब्रेशन, इतनी चमक, ये कौन है? बड़े धीरे से उनके नजदीक गए। आप लोग कहां से आए हैं? हम पहाड़ से आए हैं। किस लिए आए भाई? अब तो योग सिखाने आए हैं। तो माताओं ने कहा हमको भी सिखाएंगे? हाँ जी बैठ जाओ, सत्संग शुरू हो गया। 1 घंटा उन्होंने योग सिखाया। अब माताएं एड्रेस पूछना शुरू कर दिया, भाई मेरे को एड्रेस दो, हम शाम को फ्री होते हैं आपके साथ, तो हम सत्संग करने के लिए आएंगे। उन्होंने कहा कि फलाने धर्मशाले में रहते हैं, ये रूम नंबर है। माताओं ने कहा कि वो धर्मशाला ठीक नहीं है। बोला कि जहां हमको जगह मिली रह गए। तो बोला कि आप, हमारा बंगला खाली है, आप वहां से सामान ले आइए और वहां हमारे बंगले में रहिए, देखिए कैसे परमात्मा की मदद। तो वो माताओं ने बंगला अपना दिया, वहां सत्संग शुरू हुआ। इस तरह से सेवाएं शुरू हुई। हमारी एक दादी को भेजा बाबा ने, गुलजार दादी को, जिनका अभी लास्ट रोल अव्यक्त बाप दादा का हुआ, वो भी लास्ट में सुनाएंगे। वो छोटी 16 साल की आयु, शुरू से ट्रांस में जाने का, किसी से कोई बात नहीं करना। अब उनको आज्ञा मिली कि आपको लखनऊ में जाकर के वहां आश्रम खोलना है। अभी भगवान का आज्ञा, वो कैसे कहें कि नहीं जाएंगे, हम तो ट्रांस में जाते हैं, हम कहां है? उन्होंने कहा कि बाबा हम तो लखनऊ देखा नहीं है। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, बच्ची अंधों ने मुल्तान ढूंढ लिया, तुम तो 3 त्रिनेत्री हो, तुम लखनऊ नहीं जा सकती है। जी बाबा जाएंगे। पहले तो रिजर्वेशन भी नहीं होता था, सिंपल टिकट लेकर के दे देते थे बाबा बच्चों को। अभी वो थर्ड क्लास में अभी बिना रिजर्वेशन के लोग कैसे बैठते हैं, बीड़ी पीने वाले, सिगरेट पीने वाले, गांव के लोग, कहां ऐसे ही बातचीत करने वाले। अभी दादी देखकर के हैरान, अरे संसार में ऐसे भी लोग होते हैं। वो अगला स्टेशन, बड़ा स्टेशन आया, वहां उतर के स्टेशन मास्टर के पास चली गई, बाबू जी आपकी ट्रेन में कैसे कैसे लोग बैठते हैं, कैसे कैसे आवाज करते हैं, क्या क्या बातें करते हैं। तो स्टेशन मास्टर दादी को देख करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके आभा को देख करके बोला कि अपना टिकट दिखाइए। तो उन्होंने टिकट दिखाया, बोला कि दीदी इस थर्ड क्लास में तो ऐसे ही लोग चलते हैं, अब तो मैं थर्ड क्लास में नहीं जाऊंगा, मेरे को ऐसे जगह भेजिए जहां कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हो, अच्छे लोग हो। तो स्टेशन मास्टर अपने जेब से पैसा निकाल करके टीटी को बोला कि भाई इनको फर्स्ट क्लास के टिकट लाओ और इनको भेजो। तो वो स्टेशन मास्टर फर्स्ट क्लास के टिकट लखनऊ तक दिया और हमारी वो दादियां गई। अब वहां गई तो कोई रिसीव करने वाला नहीं, वही प्रोसेस, धर्मशाला में रुकी, तैयार हो गई, भाई हमको सत्संग कराना है। लोगों ने कहा कि वहां मिनिस्टर कॉटेज खाली है, नया बना है, चीफ मिनिस्टर से मिलिए, एक कॉटेज ले लीजिए, वहां सत्संग कराइए, अच्छे लोग आएंगे। दादी को पसंद आ गया। उन दिनों में 52 की बात कर रहा हूं, उन दिनों में परमिशन नहीं लेना होता है, आज तो चीफ मिनिस्टर से मिलो, गवर्नर से मिलो तो एक सप्ताह पहले परमिशन लो, ये करो वो करो, उन दिनों में कोई परमिशन नहीं। दादी सुबह के टाइम था चली गई उनके बंगलों पर, और लोग भी बैठे थे, सुबह सुबह चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तो दादी भी एक कोने में जाकर के बैठ गए, दो बहने थी। चीफ मिनिस्टर अपने बंगलों से नीचे उतर रहा था तो दादी के ऊपर उसकी नजर पड़ी, तो और बड़े बड़े लोग बैठे थे, सेक्रेटरी पीछे है, सर वो फलाने फलाने हैं, कोई बात नहीं। दादी के पास आ गया, बच्चियां आप लोग यहां कैसे आई हो? अ तो बाबूजी हमको आपके पास बहुत सारे मिनिस्टर कॉटेज बने हैं, हमको एक कॉटेज दे दीजिए, 3 महीना हम रहेंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे, योग सिखाएंगे। अरे बच्चियां वो तो सरकारी बंगला है, किसी हम प्राइवेट को किसी को नहीं देते हैं, वो तो सरकारी लोगों के लिए बना है। हाँ तो नहीं, हम सदा के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, 3 महीना के लिए मांग रहे हैं, वो भी योग सिखाएंगे, कोई अपना धंधा नहीं करने आए हैं। डिस्कस होती रही, वो ना कहे, दादी अपनी बात सामने रखे। सेक्रेटरी बोला कि साहब बहुत लोग यहां खड़े हैं, बहुत लोग मिलने आए हैं, चलिए छोड़ दीजिए इनको। लेकिन दादी का इतना प्रभाव था, चीफ मिनिस्टर हिला नहीं, बोला कि ठीक है ठहरो। फिर लास्ट में कन्विंस हो गया और कहा कि भाई सेक्रेटरी एक बंगला खोल करके इनको दे दो। बंगला मिला, वहां दूसरे दिन कोर्स करने के लिए चीफ मिनिस्टर की वाइफ आ गई, उसको बहुत अच्छा ज्ञान लगा, सारे वहां एमएलए और एमपी मिनिस्टर आने लगे। दादी को तो था 3 महीने के बाद मुझे जाना है, लेकिन उसकी वाइफ को चिंता थी, भाई 3 महीना होगा ये तो खाली करना पड़ेगा। उसने अपना बंगला दे दिया कि हम सरकारी बंगलों में हैं, हमारा बंगला अपना है, आप दादी ये छोड़ दो सरकारी, हमारे बंगले में रहो। आप मानेंगे नहीं, 25 मंत्री एमएलए कोर्स किए और मुरली सुनना शुरू किए चीफ मिनिस्टर के वाइफ, इस तरह से संस्था का काम शुरू हुआ। फिर धीरे धीरे मदद आती गई, फिर बाबा ने ये संस्था बढ़ा। अभी आप देखेंगे जब साकार बाबा थे, ब्रह्मा बाबा, तो 100-125 पूरे भारत में आश्रम था। बाबा अव्यक्त हुए, अब लोगों को बहुत ये हो गई कि बाबा अब इनका अव्यक्त हो गया, अभी संस्था तो खत्म होनी होनी है, क्योंकि फाउंडर ही चला गया और कौन चलाएगा। बच्चों को भी बहुत चिंता हो गई कि भाई मुरली कौन चलाएगा, कौन मिलेगा, कौन बात करेगा। बाबा को 3 दिन तक बॉडी को रखा गया। फिर वो गुलजार दादी जो लखनऊ की बात कर रहे हैं, वो ट्रांस में गई और बाबा उसके तन में आए और बाबा ने डायरेक्शन दिया सारा कि ऐसे ऐसे यज्ञ चलेगा। दीदी और दादी को निमित्त बनाया। मातेश्वरी जी 64 में शरीर छोड़ दिया, 69 में बाबा अव्यक्त हुए, तो दीदी दादी 69 से। अब बाबा के अव्यक्त होते, बाबा आए और बच्चों को कहा, बच्चे उलाहना देने लगे, बाबा आपने तो प्रॉमिस किया था कि हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, आप छोड़ के चले गए। बाबा ने कहा कि छोड़ा कहाँ है, गए कहाँ है, खाली चोला बदला है ना, हम तो यही है। अब इस चोले में थे तो आपको टाइम होता था, इतने बजे बाबा मिलेगा, अब ये चोला से फ्री है, जब चाहो तो आकर के मिलो परमधाम में, सूक्ष्म लोक में, हम फ्री हैं, आप लोगों का आह्वान कर रहे हैं। पहले इस शरीर में होते थे तो कहीं जाना है तो पासपोर्ट निकालो, वीजा निकालो, टिकट निकालो, अब तो कहां भी सारे वर्ल्ड के चक्कर लगाते हैं, दो मिनट में सारा वर्ल्ड का चक्कर लगा के आ जाते हैं। तो सेवा अर्थ इस शरीर का वस्त्र चेंज किया है फाउंडर शिव बाबा ने बच्चों को कहा, और तब से संस्था इतनी आगे बढ़ी, आज के डेट में 140 कंट्री में आश्रम है। उन दिनों में सकार बाबा के टाइम में एक भी विदेश में सेवा केंद्र नहीं था, कोई ये नहीं था, और बाबा मुरली सुनाते थे बड़े उमंग से कि बच्चे अरे एक दिन आएगा, यहां सारे विश्व के लोग आएंगे, अंग्रेज आएंगे, हर देश के अंग्रेज आएंगे और ज्ञान लेंगे, शांति की अनुभूति करेंगे, बाबा से योग करेंगे। अभी इतना बड़ा बाबा मुरली सुना रहा है, लेक्चर दे रहा है, बीच में कौन क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन वो लेक्चर देकर जब रूम में जाते थे, अपने चैम्बर में जाते थे, तो दादियां जाती थी पीछे पीछे, बाबा आपने आज बहुत अच्छा मुरली सुनाया है, लेकिन एक बात सुनाई है कि सारे विश्व को अंग्रेज आएंगे, हम दादियों में से तो कोई अंग्रेजी जानता नहीं है, तो कौन उनसे बात करेगा। तो बाबा उनको देख करके मुस्कुराते थे, बच्ची समय आएगा हो जाएगा। आज देखिए समय आया, हर देश में हमारा भाई बहने हैं, हर देश में सेंटर है, हर लैंग्वेज में ये है, हर देश के भाई बहने आते हैं यहाँ, इस जहां आप बैठे हैं यहां भी 12-15 लैंग्वेज में, जब अंग्रेजों की यहाँ सेमिनार होती है, एक व्यक्ति हिंदी में बोलता है या इंग्लिश में बोलता है, 15 लैंग्वेज में ट्रांसलेट होती है। तो ये परमात्मा का काम है, कहने का मेरा भाव ब्रह्मा बाबा का नहीं, ब्रह्मा बाबा आपको पहले बताया नंबर 1 स्टूडेंट, टॉपर, इस गॉडली यूनिवर्सिटी का टॉपर स्टूडेंट, लेकिन काम किसका है, शिव बाबा का। तो शिव बाबा ने फिर अभी 1984 में विंग बना, पहले 18 बना, आज 21 विंग है। तो जैसे आज मेडिकल के आप लोग आए हैं, मेडिकल विंग है, वुमेन्स विंग है, जूरिस्ट विंग है, एजुकेशन विंग है, यूथ है, इस तरह से 18-20। ये क्यों बनाया गया कि कोई बाबा का संदेश किसी को रह न जाए, तो सबको संदेश मिले। आज डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस है तो इतने सीनियर डॉक्टर आप आए हैं, अच्छा लग रहा है, सब प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं, हमारे से मिले हैं कि भाई नहीं ये बहुत अच्छा लगा, हम रेगुलर जाएंगे और मुझे मार्गदर्शन दीजिए। हम सबको एक ही बात कहा कि नहीं अपने हॉस्पिटल में या अपने घर में एक छोटा बाबा का रूम, मेडिटेशन रूम बनाइए, वो बाद में सुनाएंगे। तो फिर 18-20 विंग बना, सभी विंग की सेवा शुरू हो गई, सभी विंग के अच्छी अच्छी सेवा ये हुई, हर विंग अपना अपना सेवा करना शुरू किया, तो सेवा चारों तरफ बढ़ गई। पहले हमारे यूनिवर्सल पीस कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, हमारे पांडव भवन में आप जाएंगे या गए होंगे देखा होगा कि यूनिवर्सल पीस हॉल है जिसको ओम शांति भवन बोलते हैं, वहां 82 में हॉल बना, 83 से पीस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ, अमेरिका से यूएन से डायरेक्टर आते थे, यूएन से सेक्रेटरी जनरल आते थे, दलाई लामा साहब कई बार आए हैं, बड़े बड़े संत आते थे, अभी भी संतों की कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारा धार्मिक विंग है, लोग कहते हैं कि आपका काम सबसे श्रेष्ठ है, आप लोग भाग्यशाली हो, बड़े बड़े संत आते हैं, वो मानते हैं भगवान का काम है, हमारे भाई बहने परिवार से आते हैं, उनको देखते हैं, जैसे माताएं आप लोगों को खाना खिला रही है, यहाँ के रहने वाली नहीं है, अपने घरों से छुट्टी लेके आई है, डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस है, चलो हम जाके डॉक्टर को भोजन खिलाएंगे। तो उसी तरह उन महात्माओं के भी भोजन खिलाने के लिए सेवाधारी आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग इतना ही स्टाफ है जो अपने आपका जो कारोबार कर सके। तो वो सेवाधारी को देख करके हमारे महात्मा लोग खुश होते थे, नहीं इनके चेहरे पर चमक है, ये भगवान का काम है। लेकिन भगवान शिव बाबा है समझते हैं, लेकिन माइक जब आता था तो कहते भगवान सर्वव्यापी है। आप लोग लकी हो कि एक बार समझ लिए और भगवान को सर्वव्यापी कहेंगे, नहीं कह सकते। नहीं, शिव परमात्मा शिव बाबा है और उनको याद करने से क्या प्राप्ति होती है, आप लोगों ने 2-3 दिन में अनुभव किया होगा, इसका अभ्यास बढ़ाएंगे तो और अनुभव होगा। तो बाबा ने इस तरह की सेवाएं कराई और आज हर वर्ग में और हर जगह यूएनओ में हमारा ऑफिस खुल गया, दादी जी को पीस मैसेंजर का उन्होंने टाइटल दिया, अवार्ड दिया, इतनी अच्छी सभी जगह सेवाएं हुई। तो आप साधारण स्थान पर नहीं आए हो, ऐसे विशेष स्थान पर आप आए हैं, ये कोई मनुष्य मात्र का नहीं है, काम करने वाला तो कोई मनुष्य ही होगा, लेकिन परमात्मा का काम है, शिव बाबा का काम है। और समय के अनुसार आप लोग खुद हमारे से अधिक अनुभवी बैठे हैं, कैसा समय चल रहा है, उस समय में धन काम नहीं आएगा। आप देखते हैं कोविड में धन काम आया, हमने आंखों से देखा, 10 लाख रुपया लेके घूम रहे हैं, भाई एक आईसीयू में एक बेड दे दो, ऑक्सीजन बेड दे, नहीं बाबू जी ऑक्सीजन बेड नहीं है, 4 हॉस्पिटल जाते हैं दम तोड़ देते हैं, पैसा साथ में है, कोई काम आया, दुआएं काम में आती है, आज कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, सारे लोगों को कुछ न कुछ होती है, और कुछ लोग ऐसे भी वहां होते हैं उनको खरोच तक भी नहीं लगता, देखा है ना। तो कैसे एक्सीडेंट तो सबके लिए बस की हुई है, बस खाई में गिरी है, सबके लिए गिरी है, वो उनको क्यों नहीं हुआ, पुण्य आत्मा पुण्य का काम उनको ये हुआ। तो अभी समय जो चल रहा है हम लोगों को पुण्य कर्म का काम ये चल रहा है, इसलिए बाबा ने एक कर्म हम लोगों को काम करने का ये प्रेरणा दिया है और आप सब सहयोगी बने हैं। तो ऐसे महान आत्मा, आप लोग साधारण नहीं हो, बहुत महान आत्मा हो जो भगवान के कार्य में रुचि लेकर के आए हो, नहीं तो आपके पास इतने पेशेंट है, पेशेंट देखने को टाइम नहीं मिलता है। लेकिन यहां क्या बताया गया कि नहीं, हम पेशेंट को देखें, बहुत प्यार से देखें, लेकिन परमात्मा को याद करके देखें, परमात्मा की याद में रहकर देखें, तो दवा और दुआ मिलेगा। पहले हम दवाई केवल देते थे, अभी दवा के साथ दुआ भी देंगे। आपको बताया गया, आज सतीश गुप्ता का लेक्चर था, आप लोगों ने सुना होगा, मेडिटेशन से कैसे कैसे बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है। हमारी एडिक्शन का प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारा मेडिकल विंग चला रहा है, भारत सरकार ने MOU साइन किया है सोशल जस्टिस वेलफेयर डिपार्टमेंट में, पिछले साल 4 मार्च को 2023 को इतनी अच्छी सेवा हुई है कि भारत सरकार हमारे साथ खुश है। मंत्री जी, सोशल जस्टिस वेलफेयर मंत्री जी आए थे, ये इतना बिजी व्यक्ति कहीं जाते हैं नहीं, इनका प्रोग्राम बनेगा, मोदी जी कहेंगे नहीं आपको इधर जाना है, सब प्रोग्राम छोड़ करके उधर ही जाएंगे, इतना आज्ञाकारी। ये कितने बार पिछले मंत्रिमंडल में यही पोर्टफोलियो मिला था, अभी नए मंत्रिमंडल में यही पोर्टफोलियो मोदी जी ने दिया है, विश्वास करके दिया है। तो बाबा का काम, परमात्मा का काम इतना फास्ट गति से चल रहा है क्योंकि समय बहुत समीप आ गया है, परिवर्तन का काम बहुत फास्ट गति से चल रहा है। तो परिवर्तन का काम जब फास्ट गति से चल रहा है तो हमको क्या करना है। बाबा ये नहीं कहता कि परिवर्तन का काम फास्ट गति से चल रहा है तो आप अपना हॉस्पिटल बंद कर दीजिए, कारोबार बंद कर दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं, बच्चों के साथ रहते, हॉस्पिटल के साथ रहते, पेशेंट देखते, अब इतना अच्छा कर्म कीजिए कि आपके तपस्या से, आपके व्यवहार से, जो कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, आज हम नशा की बात करते हैं तो लोग हमको सहयोग देते हैं, एक ही आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि हर वर्ग सहयोग दे रहा, मुस्लिम लोग सहयोग दे रहे हैं, मदरसा में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वो कहते हैं भाई हमारे बच्चों को बचाओ, हम हर प्रकार के सहयोग देंगे, चर्च में जाते हैं वो यही गीत गा रहे हैं, बच्चों को बचाओ हम हर प्रकार का सहयोग देंगे। तो ये परमात्मा का आदेश है सबको संदेश देने का, ऐसा समय बाबा का आदेश है कि भाई ऐसा हम यहां से चले, सृष्टि परिवर्तन के लिए यहां खाली तो करना पड़ेगा, हम सब चले तो कोई बच्चा सामने आकर खड़ा न हो जाए, भगवान आप आए धरा पर लेकिन हमको तो परिचय नहीं मिला, हम क्या करें। तो बाबा का ये आदेश है कि भिन्न भिन्न प्रकार के युक्तियां, अब आप इतने सीनियर डॉक्टर, खाने के फुर्सत नहीं होती है, यहां तीन दिन आए हैं, दो दिन रास्ते में टाइम लगा, पांच दिन टाइम निकाले हैं, ये कोई कम बात थोड़ी है, लेकिन नहीं, भगवान का आदेश है, इतना व्यस्त होते हुए भी पांच दिन आपने टाइम लगाया, अब आप अनुभव करके जा रहे हैं, ये अनुभव आप समाज में, फील्ड में, अपने हॉस्पिटल में, सब जगह आप करेंगे, लोग देखेंगे अरे इतना बड़ा डॉक्टर जिसको खाने को फुर्सत नहीं है, पेशेंट लाइन में खड़े रहते हैं, वो ब्रह्मकुमारी में जाकर के आधा घंटा योग करता है, जरूर कुछ है, भगवान का काम है। तो उन लोगों को प्रेरणा देने के लिए आप सब प्रेरणा स्रोत हो, ऐसे भगवान ने नहीं बुलाया है, ऐसे आपको यहां ऐसे पालना नहीं मिल रही है, प्रेरणा स्रोत हो, भगवान के काम को बढ़ाने के लिए सहयोगी आत्मा हो, समझ रहे ना। तो इसलिए अब हम लोगों को क्या काम है, यही काम है कि हम सब मिल करके बाबा का जो काम रहा हुआ है, घर बार छोड़ना नहीं है, बिजनेस माइंडअप नहीं करना है, वो तो ब्रह्मा बाबा को आदेश मिली थी, संस्था को चलानी थी, आपके आदेश ये नहीं मिला हुआ है न मिलेगा, लेकिन घर में रहते हुए घर को आश्रम बनाने के लिए जरूर आदेश मिला है और लोग देंगे, और आप लोगों को यही राय दी जाएगी कि घर को आश्रम बनाओ, हॉस्पिटल को मंदिर बनाओ, लोग आए हॉस्पिटल में ठीक होकर के जाए, पेशेंट न हो बन करके जाए, इस तरह के आप लोग कहें कि ये तो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर के साथ साथ ये फरिश्ता है, एंजिल है, इनके पास जाओगे दवाई तो देंगे साथ साथ दुआ देंगे, आप हमेशा के लिए निरोगी बन जाएंगे। तो इस तरह से हर वर्गों की सेवा हो रही है, खाली डॉक्टर्स की नहीं, हर वर्गों की सेवा हो रही है। तो हम एक मिनट पहले पूरा करेंगे, किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो अभी दूसरा सेशन हमारा वैलिडेक्ट्री का शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर हम चाहेंगे सबको आगे आकर के आगे आ जाइए, ये करें क्वेश्चन आंसर करें, अपना अनुभव सबको ही शेयर करें, यहां आकर के क्या सीखा वैलिडेक्ट्री सेशन में। अच्छा, ब्रह्मा कुमारी संस्था का क्यों नाम रखा गया, ब्रह्मा कुमार राइट, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था का इसलिए नाम रखा गया कि ये संस्था में खाली कुमारियां नहीं थी, माताएं बहने नहीं थी, भाई भी थे, लेकिन भगवान को वो काम कराना था जो दुनिया में लोग नहीं किए हैं। सबने माताओं बहनों को तिरस्कार किया, नीचे नजर से देखा, माताओं बहनों ने उनको जन्म दिया है, महात्मा बनाया है, लेकिन वो महात्मा ने क्या कहा, नारी नरक का द्वार है, अरे तुम कहां से आए हो भैया, सोचो तो सही, लेकिन तिरस्कार किया। बाबा ने उन नारियों को आगे बढ़ाया, इसलिए इस संस्था का नाम बाबा ने, पहले ओम मंडली था, बाबा ओम ध्वनि लगाते थे, शिव बाबा ने कहा कि नहीं इसका नाम रखो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, सरकार को मान्यता देनी पड़ी, समझे ना। तो इसलिए बाबा ने ये नाम रखा जो माताओं बहनों को तिरस्कार किया, अबला समझ करके तिरस्कार किया, आज उन माताओं बहनों के द्वारा बाबा स्वर्ग का गेट खोल रहा है, खुलवा रहा है माताओं बहनों को। हमारी दादियां, टाइम के अभाव है, 104 साल की दादी जान की, दादी जानकी को रात को 12 बजे बाबा जा रहे थे बच्चों से मिल करके, दादी को बुलाया, आपको कल लंदन जाना है। कोई डॉलर नहीं दिया, कुछ ये नहीं दिया। बोलता है बाबा कि आपको, दादी ने कहा कि बाबा हम तो हिंदी जानते नहीं है, इंग्लिश जानते नहीं, हम लंदन जाके क्या करेंगे, हम तो सिंधी जानते हैं। बच्ची तुमको मधुबन बनाना है। लंदन जाकर के दादी गई। आज तो हमारे पास व्हील वाली अटैची है, हम खींच कर जाते हैं एरो ड्रम पर। दादी कपड़े का थैला, 74 की बात सुना रहे हैं, कपड़े के थैला कंधे में डाल करके चल दिया। और वहां जाकर के देखिए, बहुत बड़ी कहानी है, समय पूरा हो रहा है, दूसरा सेशन हमको टाइम पर शुरू करना है। तो ये भगवान का काम है। आज लंदन में देखिए, पूरे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर लंदन में है, विदेश का। इतना बड़ा दादी ने बनाया कैसे? अपनी तपस्या से। उनकी तपस्या इतनी थी, उनके त्याग उतना था, उनका ये इतना था। एक स्टेंजा और सुना देंगे। दादी एक दिन, एक भाई आया कोर्स करने के लिए, दादी उसको कोर्स कराया। 10 बज गया, पूछा आप कहां से आए हो? तो हम लेस्टर से आए। कितना घंटा लगेगा? 2 घंटा जाने में। दादी सोची कि अरे 10 से यही बज गया है, 12 बजेगा, बेचारा भूखा रहेगा। अपनी नाश्ता उसको खिला दिया, बोला कि जाओ। वो बेचारा के आंख से आंसू आने लगा, रास्ते भर सोचते रहा, अरे दादी इतना अच्छी ज्ञान सुनाया और अपना लिए नाश्ता बनाई थी, मेरे को खिला करके भेज दिया, दादी क्या खाएगी। तो हमारी ये दादियां अपने लिए नहीं थी। आज वो घर में अपने जाकर के सुनाया, लेस्टर में 500 का क्लास चलता है, और पूरा फैमिली सहित बाबा को स्वाहा कर दिया, सारा मकान वगैरह बाबा को दे दिया। नहीं, ये भगवान का काम है, हम सब स्वाहा। तो इस तरह से भगवान का काम चलता है। समय अभाव के कारण हम चखाचोखे कराए हैं। आप लोग सेंटरों पर जाएंगे तो आपको डिटेल्स मिलेगा, बाबा के जीवन कहानी में डिटेल्स मिलेगा। तो एक मिनट हम याद करते हैं और टाइम पर अपना सेशन शुरू करेंगे।